आयुष्मान भारत योजना का लाभ अब 70 साल से अधिक उम्र वाले सभी बुजुर्गों को मिलेगा। इस योजना के तहत पात्र लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। मंगलवार को धन्वंतरी और आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। इस योजना से दिल्ली और पश्चिम बंगाल के नहीं जुड़ने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कटाक्ष किया।
मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण, दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है।
दिल्ली और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं,
अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती है। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उसकी स्वास्थ्य योजनाएं आयुष्मान योजना से बेहतर हैं, इसलिए इसे लागू नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह प्रधानमंत्री पर ड्रामा करने का आरोप लगाते हैं।
अगर हमने गलती से भी आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी, एक भी व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एक सिंगल व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आयुष्मान भारत योजना की शर्तें हैं वो तो इतनी कठिन शर्तें हैं कि किसी को लाभ मिल ही नहीं सकता। आयुष्मान भारत में कितना बड़ा फ्रॉड सरकारों ने किया है, अगर उसकी जांच हो जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चेहरा दिखाने की हैसियत नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी। और आप ड्रामा कर रहे हैं कि अरे हम माफी चाहते हैं, हम दिल्ली में आयुष्मान नहीं लागू कर पाए। अरे अपनी आयुष्मान की सच्चाई तो जानिए आप।
विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को भी एयर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा के उड़ानों को लेकर धमकी मिली है। पिछले एक पखवाड़े में 500 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानों को उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इसको लेकर सरकार को घेरते हैं
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये हालत है सुरक्षा की कि एयरलाइंस को उड़ाने की धमकी मिल रही है और एक एक साथ 50-50 फ्लाइट उड़ाने की धमकी मिल रही है, मंदिरों को उड़ाने की धमकी मिल रही है, स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिल रही है, बम से उड़ा देंगे, बर्बाद कर देंगे, धमकी मिल रही है।
सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच की आड़ में कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सेबी प्रमुख के विरुद्ध हितों के टकराव का साफ मामला बनता है, इसके बावजूद सरकार कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया।
प्रधानमंत्री इतना डरते हैं आरोपित लोगों से कि वो उनको हटाने की हिम्मत नहीं दिखा पाते। ही डज नॉट शो द करेज टू रिमूव अ सिंगल टेंटेड पर्सन अराउंड हिम। आई कैन गिव यू अ लॉन्ग लिस्ट। हम लोग पहले कहते थे कि मोदी जी डराते हैं, माफ करिएगा, अब मैं बदलना चाहता हूं इस सेंटेंस को, मोदी जी डरते हैं। और उनका डर इसमें दिखता है कि सेबी की चेयरपर्सन से भी डरते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह से भी डरते हैं।
यूपीए शासनकाल से तुलना करते हुए पवन खेड़ा कहते हैं कि आरोप लगने पर उस समय तुरंत कार्रवाई होती थी।
आप यूपीए का दौर याद करिए, आरोप लगता था, बंधक को हटा दिया जाता था, गलत आरोप था तो भी हटा दिया, डर नहीं था, यहाँ डर है।
और अब चर्चा झारखंड विधानसभा चुनाव की, जहां प्रचार का काम जोरों से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा लगातार उठा रही है। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंता बिश्व शर्मा ने मिनी बांग्लादेश बनने का दावा करते हुए कहा,
झारखंडी समाज व्यवस्था को घुसपैठिया मिल के बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसे ही घुसपैठी आते रहते हैं तो झारखंड पूरा अलग हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा और मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने का कदर में है।
घुसपैठियों को राज्य से खदेड़ने का वादा करते हुए हिमंता कहते हैं,
आज हमने तीन घोषणा किया हूं। पहला, जब सरकार बनेगा हम एनआरसी लाऊंगा। कानून का रास्ता से हम लोग घुसपैठियों को धक्का मार के झारखंड से निकालूंगा।
झारखंड में दो चरणों के तहत 13 और 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। सत्ताधारी गठबंधन भाजपा पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगा रहा है। इधर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। मंगलवार को नामांकन भरने के आखिरी दिन तक सीट शेयरिंग को लेकर पार्टियों के बीच खींचतान बनी रही। भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद की खबरें हैं। इसके चलते कई जगहों पर दोस्ताना मुकाबला देखने को मिलेगा। 288 सीटों वाली विधानसभा के लिए भाजपा ने 146 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं कांग्रेस ने 102 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बाकी सीटों पर इनके सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।